हवेली के बड़े हॉल में कुछ देर तक वहीं खामोशी बनी रही। झूमर की हल्की रोशनी फर्श पर फैल रही थी और बाहर आंगन से आती हवा पर्दों को धीरे धीरे हिला रही थी। सुषमा देवी अब भी रत्ना देवी के चेहरे को ध्यान से देख रही थी। अब बताओ भी रत्ना, क्या बात है? उन्होंने नरमी से पूछा। तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? रत्ना देवी ने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, असल में आज विश्वनाथ की बचपन की एक दोस्त आने वाली थी। सुषमा देवी ने थोड़ा आश्चर्य से पूछा, दोस्त? रत्ना देवी ने सिर हिलाया, हाँ, अक्षरा। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, दोनों बचपन में साथ साथ ही बड़े हुए हैं। जब विश्वनाथ छोटा था ना, तो पूरा दिन इसी लड़की के साथ खेलता रहता था। उनकी आंखों में पुराने दिनों की याद चमक उठी। लेकिन कुछ साल पहले उसके पिताजी का ट्रांसफर जोधपुर हो गया था, फिर पूरा परिवार वहीं चला गया। सुषमा देवी ध्यान से सुन रही थी। रत्ना देवी ने आगे कहा, आज वो जयपुर आने वाली थी। वैसे तो कल आने वाली थी, लेकिन कल की फ्लाइट नहीं मिली तो वे आज आ रही हैं। सुबह ही उसका फोन आया था, उसने कहा था कि हवेली जरूर आएगी। उन्होंने घड़ी की तरफ देखा, लेकिन अभी तक नहीं आई, फोन भी नहीं लग रहा। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। बस उसी की वजह से थोड़ा परेशान हूँ। सुषमा देवी ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, अरे शायद रास्ते में कहीं रुक गई होगी, इतनी चिंता मत करो। तभी अचानक पीछे से हल्के हल्के कदमों की आहट आई, लेकिन रत्ना देवी को कुछ पता नहीं चला। अगले ही पल दो नर्म हथेलियां पीछे से आईं और उन्होंने धीरे से रत्ना देवी की आंखों को ढक लिया। बताइए मैं कौन हूँ? एक चुलबुली आवाज गूंजी। रत्ना देवी एक पल को चौंक गई, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उन्होंने बिना एक सेकंड लगाए कहा, अक्षरा। पीछे खड़ी लड़की जोर से हंस पड़ी। अरे वाह, उसने कहा। फिर उसने हाथ हटा लिए। रत्ना देवी तुरंत पलटकर खड़ी हो गई। उनके सामने एक खूबसूरत चंचल लड़की खड़ी थी। उम्र 30 साल थी, लंबे खुले बाल, आंखों में चमक और चेहरे पर शरारती मुस्कान। अक्षरा, रत्ना देवी ने खुश होकर कहा। अगले ही पल उन्होंने उसे गले लगा लिया। तुम कब आई जयपुर? अक्षरा ने भी उन्हें कसकर गले लगा लिया। बस अभी थोड़ी देर पहले, सीधे यहाँ आ गई। फिर वो हंसते हुए बोली, लेकिन एक बात बताइए, आपने मुझे इतनी जल्दी पहचान कैसे लिया? रत्ना देवी हंस पड़ी। अरे पगली, उन्होंने उसके गाल पर हल्की चपत लगाई, तुझे कैसे नहीं पहचानूंगी? तेरी आवाज आज भी वैसी है और ये शरारत भी। दोनों हंसने लगी। तभी सुषमा देवी सोफे से उठकर उनके पास आ गईं। रत्ना देवी को जैसे अचानक याद आया। अरे हाँ, उन्होंने कहा, अक्षरा आओ, मैं तुम्हें अपनी बड़ी बहन से मिलवाती हूँ। उन्होंने इशारे से सुषमा देवी की तरफ दिखाया, ये है सुषमा दीदी। अक्षरा तुरंत आदर से उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने हल्का सा सिर झुकाकर कहा, नमस्ते आंटी। सुषमा देवी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर दिया, जियो बेटा। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम हो अक्षरा? अक्षरा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। रत्ना देवी ने गर्व से कहा, हाँ दीदी, यही है अक्षरा। फिर उन्होंने समझाते हुए कहा, विश्वनाथ की बचपन की दोस्त, दोनों बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ते थे और हर वक्त साथ ही रहते थे। सुषमा देवी ध्यान से अक्षरा को देखने लगी। अक्षरा का चेहरा सच में बहुत प्यारा और जीवंत था। रत्ना देवी आगे बोली, लेकिन कुछ वक्त पहले इन लोगों को जोधपुर शिफ्ट होना पड़ा था, तब से ये लोग वहीं रह रहे थे। अक्षरा ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, हाँ, पापा की नौकरी की वजह से जाना पड़ा। फिर उसने चारों तरफ हवेली को देखते हुए कहा, लेकिन सच बताऊं आंटी, इस हवेली को मैंने बहुत मिस किया। उसकी आंखों में चमक आ गई और विश्वनाथ को भी। ये कहते ही उसके चेहरे पर हल्की सी शरारती मुस्कान आ गई। रत्ना देवी मुस्कुरा दी, लेकिन सुषमा देवी ने ये बात बहुत ध्यान से सुनी। हॉल में फिर हल्की सी खामोशी फैल गई। अक्षरा अब भी चारों तरफ हवेली को देख रही थी, जैसे पुराने दिनों की यादें उसके सामने घूम रही हों। और उसी पल हवेली का ये सीन जैसे ठहर सा गया। हवेली के लंबे कॉरिडोर में हल्की हल्की रोशनी जल रही थी। रत्ना देवी आगे आगे चल रही थी और उनके पीछे अक्षरा अपने छोटे से बैग के साथ उत्सुकता से चारों तरफ देखती हुई चल रही थी। वाह, अक्षरा ने धीरे से कहा, हवेली तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। रत्ना देवी मुस्कुरा दी, इतने साल बाद आई हो, इसलिए तुम्हें सब नया लग रहा है। दोनों सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाली मंजिल पर पहुंच गईं। कॉरिडोर के आखिर में रत्ना देवी एक कमरे के सामने रुकी। उन्होंने दरवाजा खोला। लो अक्षरा, ये रहा तुम्हारा कमरा। अक्षरा जैसे ही अंदर गई, उसकी आंखें चमक उठी। कमरा बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था, हल्के गुलाबी पर्दे, बड़ी सी खिड़की और बीच में आरामदायक बिस्तर। साइड टेबल पर ताजे फूलों का गुलदस्ता भी रखा हुआ था। ओ माई गॉड, अक्षरा खुशी से बोली, वो तुरंत कमरे के बीच में घूम गई। ये कमरा तो कमाल का है। फिर उसने शरारती अंदाज में कहा, लगता है मेरे आने की पूरी तैयारी थी। रत्ना देवी हंस पड़ी। हाँ, तुम्हारे लिए ही तो तैयार करवाया है। अक्षरा बिस्तर पर बैठ गई। थैंक यू आंटी, रत्ना देवी ने प्यार से कहा। तुम पहले फ्रेश हो जाओ बेटा, इतनी लंबी यात्रा करके आई हो। अक्षरा ने सिर हिलाया। ठीक है, बस 10 मिनट। रत्ना देवी कमरे से बाहर चली गई। अक्षरा ने अपना बैग रखा और कमरे को एक बार फिर गौर से देखने लगी। उसके चेहरे पर साफ खुशी थी। घर जैसा लग रहा है, उसने धीरे से खुद से कहा। फिर वो बाथरूम में फ्रेश होने चली गई। समय धीरे धीरे बीत गया। शाम हो चुकी थी। हवेली के आंगन में लाइटें जल चुकी थी और बाहर से आती ठंडी हवा पूरे घर में फैल रही थी। अक्षरा अब फ्रेश होकर हल्के नीले रंग के सूट में थी। वो कॉरिडोर में धीरे धीरे चल रही थी। उसकी नजरें बार बार हवेली के कमरों पर जा रही थी, जैसे वो हर जगह को पहचानने की कोशिश कर रही हो। विश्वनाथ का कमरा, उसने धीरे से कहा। उसे बचपन की यादें याद आने लगी। वो उसी तरफ बढ़ गई। कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अक्षरा ने हल्के से उसे धक्का दिया। दरवाजा धीरे से खुल गया। कमरा बड़ा और सधा हुआ था। अंदर हल्की रोशनी जल रही थी। एक तरफ बड़ी सी खिड़की, दूसरी तरफ बुकशेल्फ और बीच में सलीके से रखा हुआ बेड। कमरे में हल्की सी परफ्यूम की खुशबू थी। अक्षरा धीरे धीरे अंदर चली गई। उसकी नजर अचानक दीवार पर लगी एक बड़ी सी तस्वीर पर पड़ी। वो रुक गई। तस्वीर में विश्वनाथ था। सूट पहने, गंभीर चेहरा और आंखों में वही सख्त भाव। अक्षरा कुछ पल तक उसे देखती रही। फिर उसने हल्की हंसी के साथ कहा, ओहो, मिस्टर राठौर। वो थोड़ा और करीब आ गई। टेबल पर एक फोटो फ्रेम भी रखा हुआ था। उसने उसे उठाकर देखा। उसमें भी विश्वनाथ की तस्वीर थी, लेकिन उसमें भी उसका चेहरा उतना ही सख्त था। अक्षरा ने भौहें चढ़ा ली। यार, उसने फोटो को घूरते हुए कहा, ये क्या है? वो कुर्सी पर बैठ गई और फोटो फ्रेम हाथ में लेकर उसे देखने लगी। विशु, उसने धीरे से कहा, तुम अब भी वैसे ही हो क्या? फिर उसने नाक सिकोड़ ली। इतने रूड, इतने एंग्री। वो फोटो से ही बात करने लगी। बचपन में भी तुम ऐसे ही गुस्सैल थे, उसने हंसते हुए कहा। याद है जब कोई तुम्हारी पतंग काट देता था तो तुम पूरा मोहल्ला सिर पर उठा लेते थे। वो हंस पड़ी। फिर उसने तस्वीर को थोड़ा करीब लाकर कहा, लेकिन सच बताऊं, तुम्हारी ये एंग्री वाली शक्ल आज भी वैसी है, उसने शरारती अंदाज में कहा। जरा भी नहीं बदले। फिर उसने सिर हिलाया। मुझे तो लगा था इतने सालों में थोड़ा मुस्कुराना सीख गए होगे। अक्षरा कुर्सी पर पीछे टिक गई। उसकी आंखों में पुराने दिनों की यादें तैरने लगी। पता है विशु, उसने धीरे से कहा, जब मैं जोधपुर गई थी ना, तो मुझे सबसे ज्यादा किसकी याद आती थी? उसने खुद ही जवाब दिया, तुम्हारी। कमरे में हल्की खामोशी थी। वो अब भी फोटो को देख रही थी। लेकिन तुम तो हमेशा ऐसे ही थे, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, गुस्सैल, जिद्दी और हमेशा सबको डांटने वाले। फिर उसने फोटो को वापस टेबल पर रख दिया। उसकी नजर फिर दीवार पर लगी बड़ी तस्वीर पर गई। वो धीरे धीरे उठकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई। लेकिन एक बात बताऊं, उसने धीरे से कहा, मैं वापस आ गई हूँ।
उसकी आंखों में हल्की चमक थी। अब देखते हैं, वो तस्वीर को घूरते हुए बोली, तुम पहले जैसे ही हो या थोड़े बदल भी गए हो? कमरे में शाम की हल्की हवा चल रही थी। पर्दे धीरे धीरे हिल रहे थे और उसी शांत कमरे में अक्षरा विश्वनाथ की तस्वीर को देखती हुई खड़ी थी।